उन्होंने अपनी बांधवी सेना का ठीक ढंग से रात्रि में भी निरीक्षण किया और कहा कि देखो अपने जितने भी बंदर सेना अपने पास में जो शस्त्र है वो शस्त्र पास में रखो, जैसे पर्वत शिखर है, जैसे वृक्ष है, और अपने पास में जो लड़ाई के साधन है वो अपने साथ में रखो और मौका पड़ते ही अपने को तो आक्रमण कर देना है। अब विचार आता है विभीषण कि हम इस लंका को नष्ट तो कर देंगे, लेकिन रावण के मर जाने के बाद ये लंका जब तुमको मिलेगी तो उस समय में नष्ट की हुई तुमको कैसे मिल रही है। जगरी हूँ कुंजर प्रख्या बानरा परवारणा, इधर कई बंदर थे वो जंगलों के अंदर निर्भीक होके घूम रहे थे, तो जंगलों में घूमने वाले जो सिंह थे उन सिंहों को पकड़ते हैं बंदर और हाथियों को पकड़ते हैं और उनके साथ तरह तरह से खेल खेलते हैं और उनको भगा देते हैं, वो भय के मारे छिप जाते हैं। ऐसी ये लंका है, इस लंका के अंदर वे लोग चारों दरवाजों का निरीक्षण करते हुए उत्तर की ओर विशेष ध्यान रखते हैं। एक बहुत बड़ा पर्वत शिखर लेकर के राम जी महाराज लक्ष्मण जी ये सब बंदरों को दिखाते हुए और उसकी रक्षा करते हुए उत्तर के मार्ग की तरफ लाते हैं। भगवान श्री राम उत्तर की तरफ आकर के और विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर का दरवाजा राम के अलावा और किसी के द्वारा रक्षित नहीं था। ये देखो जितने बड़े बड़े वीर थे वो उत्तर के दरवाजे से ही निकलते थे और रावण भी उत्तर की तरफ ही विशेषता से ध्यान दिया हुआ था। लघुनाम त्रास जननम पाताल अमीव दानवई, देखो ये राक्षस लोगों से बंदरों की रक्षा की जाती है वैसे ही जैसे दानवों ने पाताल की रक्षा कर रखी है, ऐसे राम जी की सेना ने अपनी सेना की रक्षा की है। पूर्व दरवाजे पर हमारे नील नाम के बानर वो महेंद्र और द्विविध के साथ खड़े हुए हैं। दक्षिण दिशा के दरवाजे पर महावीर ऋषभ देव जी खड़े, ऋषभ है और गवाक्ष है, गज और गवय है, चार ये रहे। पश्चिम द्वार की ओर हनुमान जी हैं और उनके साथ प्रमाथी और प्रघस नाम के और अच्छे श्रेष्ठ बांदर हैं और बीच के अंदर सुग्रीव है। सुग्रीव जी के पास में जो सेना है वो हर दरवाजे पर जाकर संभालने योग्य है। इस प्रकार से 36 करोड़ बांदरों को लेकर के सुग्रीव ने अपने पहले मोर्चे से अपने आप के दरवाजों को सबको तैयार किया और उन 36 करोड़ के पीछे कितने कितने करोड़ बांदर है इनका कोई अंत नहीं है, इतने बांदर उनके पीछे हैं। पश्चिम दरवाजे पर सुसेन है, वो सुसेन जामंत ये राम जी की सहायता के लिए अनेकों बंदरों को लिए हुए खड़े हैं। सर्वे विकृत लांगुल्ला, सबके सब बंदर बड़े विकृत हैं, विकृत दिखाई दे रहे हैं, माने क्रोध के अंदर उनका जो है स्वरूप जो है वो वैसा नहीं रहा जैसा रहा करता है। वो अपने पास में द्रुम शैलाग्रान वृक्षों को ले लिए, पर्वतों को ले लिए और वे सबके सब युद्ध के लिए उत्साहित हुए हुए हैं। कोई कोई हजार हाथियों का बल लिया हुआ है तो कोई उनसे 10 गुना ज्यादा बल लिया हुआ है, कोई तरह तरह से उछल करके अपने अकेले ही पैंतरा दिखाता है तो दूसरा बांदर आकर उसके साथ पैंतरे से युद्ध करके अभ्यास कर रहा है। इस प्रकार से लंका के अंदर बंदरों का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। आयुता नाम सहस्रं च परिमताम अभ्यवर्तते, लाखों करोड़ों बंदर, करोड़ों करोड़ों बंदर लंकापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। इस लंकापुरी के अंदर प्रवेश करना हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल है, आकाशचारियों के लिए तो लंका में घुसना और मुश्किल है। राक्षसा विस्मयम जगमुह, सारे राक्षसों को भय लगता है कि राम की सेना में इतना बल कहां से आया। रावण के राक्षसों में इतना बल हो ये तो कोई अचंभा नहीं, ये राम के सेनाओं में इतना बल कैसे आया। अब भाई वहां पर रणभेरियां बजाने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं और रणभेरी बजाने में सब लोग देख रहे हैं कि अब इसी में ही अपना भला है। भगवान रावण अपने बाणों को ठीक बनाने में लगे हुए हैं। विभीषण से अनुमति राज धर्म अनुस्मरता, उस समय में विभीषण के आदेश का पालन करने के लिए सब लोग तैयार हैं और विभीषण जी महाराज के साथ में अंगद खड़े हैं। उस समय में विभीषण ने कहा, राम जी ने सबसे कहा, विभीषण ने राम जी ने सबसे कहा, गत्वा सौम्य दशग्रीवम जय मद्वचनात् कपे। अरे अंगद, तुम एक काम करो। हाँ महाराज, क्या काम करें? तुम लंका में जाओ और लंका में जाकर रावण को कुछ समझाओ, क्योंकि रावण उचित कार्य नहीं कर रहा है। रावण की शोभा समाप्त हो गई, रावण का ऐश्वर्य भी समाप्त हो गया। ये रावण मुमूर्षु है, मुमूर्षु माने मरने वाला है। असल में तो मुमूर्षा माने मरने की इच्छा रखने वाला। और देखो, इस रावण को समझाओ कि जो आपने मोह से अज्ञान से पाप किया है, उस पाप का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास में बांदरों की सेना आई हुई है। और तुमने जो ब्रह्मा जी से वरदान लेकर जैसा घमंड किया है, उस घमंड को हम लोग उतारने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर दंड बरसाने के लिए अवतार लिया है, क्योंकि तुमने मेरा सबसे बड़ा अपराध किया है। लंका के अंदर रावण को ये बात बोल देना, लंका के अंदर कोई तुमको दूसरा देवता भी मिले, देवता से भी यही कह देना, लंका के अंदर कोई तुमको किसी प्रकार से दबाने की चेष्टा करे, तुम दबना नहीं। तुम अधर्म पूर्वक राज्य करते हो, अतः अब तुम्हारा राज्य में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये तुम्हारा राज्य है वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। उसको समझाना कि तुम्हारा ऐश्वर्य जितना है बस उतना ही ऐश्वर्य तुम देख लो, अब तुम्हारा राज की तरफ समय आ गया है। तुम राम के राज्य के अंदर अधर्म पूर्वक जरा सी देर भी जीत नहीं सकते हो। रावण को समझाना कि तुम्हारी जो आयु है वो आयु अपूर्ण हो रही है। रावण को समझाना कि मैं तुम्हारे जैसे मूर्खों को और पापियों को दंड देने के लिए यहां आया हूं। रावण को कहना कि देखो, तुम पक्षी होकर के कहीं उड़ भी जाओ कि तो मैं तुम्हारा पिंड छोड़ने वाला नहीं हूं। और रावण को कहना कि तुम अपना जीवित श्राद्ध अभी कर लो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं रहेगा। और रावण से कहना कि तुमको लंका में जितना रहना है, जहां रहना है वह थोड़ा थोड़ा रह करके अपने रहने की इच्छा पूरी कर लो। ये सब बातें ज्यों की त्यों मेरी तरफ से तुम रावण को सुना देना। तारानंदन बाली ने राम को प्रणाम किया और आकाश मार्ग से सीधा वो रावण के महल की ओर रवाना हुआ। उसको क्या देरी लगे, थोड़ी देर में वो रावण के महल पर पहुंचा। अंगद ने वहां पहुंच करके रावण को सुनाते हुए कहा, ए लंका नरेश रावण, तुमको कोसलेंद्र सरकार श्री राम ने आज्ञा दी है कि अंगद जाओ, तुम मेरे दूत बनकर के रावण को सुनाओ। तो मैं क्या सुनाऊं, अभी तो मैं राम जी की बात तुम्हें सुनाता हूं। और सुनो रावण, राम जी ने कहा है कि रावण तुम या तो हमारी शरण में आ जाओ और नहीं तो भरत सहित बाणों को खाने के लिए तैयार हो जाओ। वसुधा तल पर कौन ऐसा त्रिलोकी के अंदर योद्धा है जो हमारे सामने टिक सके? तू ऋषियों का शत्रु है, देवताओं का शत्रु है, आज तुम्हारा मैं उद्धार करके रहूंगा। इस प्रकार से लंका के अंदर अंगद जी ने धमकाया, कहा कि शत्रु मद्यो धरिष्यामी, रावण तो हमारा शत्रु है, तेरा आज ही हम विनाश कर देंगे। विभीषण से चैश्वर्यम, अब विभीषण को ऐश्वर्य मिलने वाला है, राजगद्दी मिलने वाली है। और देव दानव यक्षाणाम, देवताओं में, दानवों में, यक्षों में, गंधर्व है, उरग है और राक्षस है, इनमें जो प्राणी तुमको अच्छा लगे उस प्राणी के पास जाकर अपने प्राणों की याचना करो, परंतु उससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नचेत सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि। देखो तुम बड़ा आदर करो, सत्कार करो, और सीता को तुम यदि दे देते हो तो आज संसार में तुम्हारा बड़ा नाम होगा, नहीं देते हो तो याद रखो कि तुम्हारे यहां बड़ा भारी कष्ट होगा। इस प्रकार से बहुत कठोर वाक्य अंगद जी ने रावण को सुनाए। और उसके बाद रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हे मेरे सैनिकों, पहले भी मैंने हनुमान के लिए तुमको आदेश दिया था लेकिन तुम माने नहीं, और आज भी मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम जाकर इस बागर को, अंगद को पकड़ लो, तुम्हें बड़ा लाभ होगा। कम से कम हमारी कोई बुराई तो नहीं करेगा शत्रु सेना में जाकर, इसलिए गृहताम वद्यताम, इसको पकड़ो और इसको मारो। तो चार रावण के वो आए, पुरुष लोग आए, राक्षस लोग, वो आकर के और घेर लिया अंगद जी को, और अंगद जी को घेर क्या लिया, उन्होंने अंगद जी को मारने की सोची। तो अंगद जी महाराज उस समय में बहुत तेजी के साथ उनके मुंह के ऊपर मुक्के की लगाई है और उनको हाथ का झटका दिया, और उनको झटका देने के बाद वे अंगद जी सीधे राम जी के पास दौड़े दौड़े आ गए। राम जी ने पूछा, अंगद क्या बात हुई? ये कोई खास बात नहीं, कुछ तो बात हुई। हाँ, मैं रावण के पास गया था समझाने के लिए। तो उस समय में एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी कांपने लग गई। पफाल चतदाक्रांतम दश ग्रीवस्य पश्यतः, रावण ने जब घोर से इस पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी उस समय में कांपने लग गई, चलने लग गई। तो भंगत्वा प्रासाद शिखरा, मैंने और तो कुछ किया नहीं किया, उसका जो महल था उस महल को मैंने तोड़ दिया किलकारी लगाते हुए, और उसको तोड़ने के बाद मैं यहां आया हूं। और कहने लगा कि महाराज, अविनाशम चात्मन पश्यन। महाराज ये रावण है ये ज्यादा दिन जीने वाला नहीं लगता है। राम जी महाराज ने पूछा कि क्यों अंगद तुम कोई ज्यादा दिन क्यों नहीं जीते हुए दिखता है। तो अंगद ने कहा कि महाराज सबसे बड़ी बात तो यह है कि रावण के पास में किसी प्रकार का धर्म नहीं है और जिसके पास में बुद्धि का बल नहीं होता और वो दूसरे के कहे के अनुसार चलता है उसके पास में कहां से शक्ति आएगी। राम जी महाराज उसकी बातों को सुने और सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। पर्याक्रमस्त दुर्धर्षो नक्षत्राणी चंद्रमा। अंगद ने कहा महाराज इतने पर भी हमको किसी प्रकार रावण की लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि जिस प्रकार से अक्षौहिणी सेनाओं का वध होता है उस प्रकार से इसके ऊपर उनका सेनाओं का प्रहार किया जाए और रावण को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। अपरे समरे हर्षात हर्षमेवोपपेदिरे। और उनके बाद भाई उन बंदरों के मन में बड़ा हर्ष हुआ और हर्ष के साथ वे परकोटों के ऊपर चले गए। परकोटों के ऊपर जाने के बाद अब बंदरों के मन में राक्षसों के मन में बड़ा हाहाकार हुआ और विचार किया कि राक्षस तो अब हमें ये बंदर तो अब हमें किसी प्रकार छोड़ने वाले नहीं है। राक्षस राज की लंका त्रस्त थी डरी हुई थी। अतएव राक्षस राज स्वयं भी अंदर से बहुत घबराए हुए मालूम दे रहे थे। जिसमें अंगद ने जाकर जब राम जी का प्रताप सुनाया तो उसके बाद तो रावण और ज्यादा भयभीत हो गया। उस समय में वो निशाचर रात्रि के समय लंका के अपने महल के ऊपर गया और ऊपर जाकर के उसने बहुत विशाल जंगल को और बंदरों की सेना को देखा जो बंदरों की सेना पर्वत से उतर रही थी और असंख्य बंदर सीधे लंका की ओर चले आ रहे थे। राम जी महाराज अपनी सेना के बीच में बैठे हुए बड़े प्रसन्न हो रहे थे और रावण राक्षसों के बीच में बैठा हुआ बड़ा उदास हो गया था। राम जी महाराज थोड़े सुवेल पर्वत से नीचे उतर करके आगे आए। उनके मन में विचार आया ओहो हिरणों के समान आंख वाली मेरी सीता यही कष्ट पाती है। इस प्रकार से राम जी महाराज के नेत्रों में जल आ गया और राम जी महाराज ने बंदरों को आदेश दिया कि हे बांदरों युद्ध के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। जिन जिन को जिस जिस पक्ष से युद्ध करना है उसी पक्ष में जाकर वे खड़े हो। माने जो नील के साथ है वो नील के साथ रहेंगे, अंगद के साथ रहने वाले अंगद के साथ ही रहेंगे, और हनुमान के साथ रहने वाले हनुमान के साथ रहेंगे, मेरे साथ के प्राणी मेरे साथ रहेंगे। राम जी महाराज ने उस समय में सेना को पूर्ण रूप से आदेश दे दिया था और बंदर सेना इसी आदेश के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वे तांबे जैसे मुख वाले सोने जैसे आभा वाले बानर अपने जीने मरने की पूरी आशा को छोड़ करके और राक्षस राज रावण से युद्ध करना ये लक्ष्य बनाकर वे कोई पर्वत खंडों से कोई पर्वत खंड लेके आए, किसी ने राक्षसों पर मुख्य का प्रहार किया, किसी ने परिखाओं का उपयोग किया, कोई प्राकार पर चले गए। इस प्रकार से अपने पास के शस्त्र ले लेकर के राक्षस लोग और बानर दोनों के दोनों ही सुसज्जित तैयार हो गए। और इतने में ही बानरों ने जोर से चिल्लाना चालू किया, जयत्युर्बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल। बहुत बड़े विशाल बल वाले श्री राम और लक्ष्मण की जय हो। राजा जगत राजा अजय के सुग्रीव और महाराज सुग्रीव इनकी भी जय हो, ऐसे राम जी महाराज की जय बोल दी गई। इधर राक्षसों ने भी रावण की जय बोल दी। बंदरों ने बीरबाहु सुबाहु नल और पनस, ये चार बंदरों ने उस समय में अपने सैनिकों का एक पड़ाव देखा। और उस पड़ाव के द्वारा उन्होंने चारों प्रकार की दिशाओं को संभाल लिया, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा। पूर्व दिशा में कुमुद थे करोड़ों बांध 10 करोड़ बांदरों के साथ, उनकी सहायता के लिए प्रगस नाम का एक बहुत विलक्षण योद्धा था, वो योद्धा उनके साथ था और नील के साथ। दक्षिण की तरफ जो सतवली नाम के थे वे 20 करोड़ बंदरों के साथ तैयार थे। पश्चिम द्वार पर सुसेन थे जो करोड़ों करोड़ों बंदरों के द्वारा सुरक्षित थे। उत्तर द्वार की तो बात ही निराली थी, राम जी वहीं, लक्ष्मण जी वहीं, सुग्रीव वहीं, सुग्रीव का पुत्र भी वहीं, गवाक्ष और गंधमर्दन ये भी वहीं। वहां सेना की कोई गिनती कर नहीं सकता था, इतनी विशाल सेना थी। समन्ता परिधावन्तो ररक्षो हरिवाहिनी। और राम जी महाराज ने उस समय सारी बांदरी सेना का स्वयं ने निरीक्षण करके और सुरक्षा प्रदान की। इस प्रकार से बंदरी सेना और राक्षसी सेना के बीच में अब थोड़ा सा अंतराय बाकी है। वो जो अंतराय है वो अंतराय केवल पूर्ण आज्ञा की ही बाकी रही है। अभी राम जी की तरफ से तो आज्ञा है, लेकिन अभी रावण की तरफ से अभी आज्ञा नहीं हो पाई है। बस उसके बाद अपने अपने मोर्चे संभालने के लिए सभी योद्धा लोग तैयार रहेंगे। इस प्रकार से भाई अब ये लड़ाई के लिए मोर्चे पूरे बन गए हैं। और उसके बाद युद्ध अवश्यम भावी ये सब समझ चुके हैं, केवल राक्षसों की भेरीनाद का थोड़ा सा समय विलंब है, माने थोड़ा समय लग सकता है, उसके बाद तो वही क्रम रहेगा। एतत् श्रुत्वा तदा वाच्यम रावणस्य मुखेरितम। रावण ने उस समय सबको कहा कि देखो बानर लोगों का साहस बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग करते क्या हो, आप लोग जल्दी आओ और हमारी लंका में बैठे हुए राक्षसों पर जो बांदरी सेना आ धमकी है उसके साथ युद्ध करो। सब राक्षसों के मन में बड़ी शंका है और सब जो है राक्षस अपने साथ में शस्त्र भी लिए हुए हैं और रावण से उत्साहित हुए हुए रजनीचर माने राक्षस लोग अपने हाथ में कई शस्त्र लिए हुए अपने अपने स्थान से चल पड़े हैं। और राक्षस लोग जब चले हैं उस समय में पृथ्वी पर अंतरिक्ष में सागर में एक बड़ा भारी नाद हुआ है। उस समय में लंका के राक्षसों ने सब राक्षसों को आवाज कर करके बुलाया है और दोनों मुहानों के ऊपर अब जय जयकारे हो चुकी हैं और जय जयकार होते ही अब इनका आपस में लड़ने का कार्यक्रम चालू होने वाला है। अब ये आपस में द्वंद्व युद्ध करेंगे, दो दो का युद्ध करेंगे। अब भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के राम रावण युद्ध के प्रसंग में अपने लोग चल रहे हैं। दोनों सेनाओं की ओर से जय जयकारे हो चुकी है और लंका के अंदर से राक्षस लोग बांदरों को मारने के लिए टूट पड़े हैं और इधर बांदर तो भगवान श्री राम की सेवा का कार्य समझते हुए बड़े उत्साह के साथ में युद्ध कर रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, ये वानर बड़े महात्मा थे जिन्होंने अपना जीवन भगवान के कार्य के लिए समर्पित कर दिया, भगवान के संकल्प में अपना संकल्प लगा दिया। वे वानर होते हुए भी बड़े विलक्षण महात्मा थे। राक्षसों के साथ में इन बांदरों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि राक्षस कोई घोड़ों पर थे, कोई हाथियों पर थे, कोई सूर्य के समान प्रकाशमान रथों पर थे, बहुतों ने बड़े अच्छे अच्छे कवच पहन रखे थे, परंतु बांदरों का जो उत्साह था वो अपने आप में बड़ा विचित्र था। बांदरों को किसी घोड़े की, रथ की, हाथी आदि की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब रावण की ओर से राक्षस लोग लंका से बाहर आए तो द्वंद्व युद्धम अवर्तत, वहां पर द्वंद्व युद्ध हो गया, एक एक से एक एक जना भिड़ गया। सबसे पहले अंगद और मेघनाद आपस में भिड़े, प्रजंग और संपाति ये दोनों लड़े। जंबुमाली राक्षस ने हनुमान के साथ युद्ध किया, विभीषण जी ने शत्रुघ्न नाम के राक्षस से युद्ध किया और तपन ने गज से युद्ध किया। तपन एक राक्षस था। निकुंभ राक्षस ने नील वानर के साथ युद्ध किया। वानरराज सुग्रीव ने प्रघस के साथ युद्ध किया। देखो आप लोग बोर मत होना हो, आप लोग किसी प्रकार से ये नहीं समझना कि ये बात क्या है। देखो लिखा है इसलिए बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत ही विस्तार से, उसको तो थोड़ा कम कर रहे हैं, परंतु ये सुनने का ही एक महात्म्य है। विरूपाक्ष के साथ में लक्ष्मण जी भिड़ गए, राम जी के साथ में चार राक्षसों ने एक साथ युद्ध किया और मैंद ने वज्र पुष्टि राम के राक्षस से और द्विविध ने अशनी प्रभ नाम के साथ, अपने नाम के वाले राक्षस के साथ युद्ध किया। प्रतपन ने नल के साथ में युद्ध किया और सुषेण ने विद्युतमाली नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया। देखो राक्षसों की तरफ से बहुत प्रबलतम वरिष्ठतम राक्षस थे, इधर बांदरों की तरफ से भी ये बहुत प्रबल वीर राक्षस वो बानर थे, और भी दूसरे बानर थे जिनका नाम इतना प्रसिद्ध नहीं था और राक्षसों का भी नाम प्रसिद्ध नहीं था। सब द्वंद्व युद्ध में लगे रहे, माने द्वंद युद्ध का ये कायदा था कि जो जिसके साथ लड़ता है वो लड़ता है, दूसरा कोई उसके बीच में नहीं पड़ता था। इस प्रकार का ये तुमल द्वंद युद्ध हुआ। खूब राक्षस थे, खूब बानर थे, वहां पर खून की नदी बहने लगी। अंगद ने अपने हाथ में गदा ली और मेघनाद के ऊपर बड़े क्रुद्ध होकर के प्रहार किया, और मेघनाद ने भी अंगद के ऊपर प्रहार किया जैसे वज्र के द्वारा शतक क्रतु प्रहार करते हैं, इंद्र प्रहार करते हैं, उस प्रकार से अंगद के ऊपर प्रहार किया और अंगद ने अपनी गदा के द्वारा मेघनाद के घोड़े को और रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। मेघनाद ने देखा कि अंगद का बल बड़ा विचित्र है, अतः मेघनाद वहां से एक बार निवृत्त हो गया, क्योंकि उसके पास रथ नहीं था। संपाति का जो प्रजंग के साथ युद्ध हुआ था उसमें संपाति ने प्रजंग को